आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनम है और हम लोग आपकी स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, जिसका नाम है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। सो हम लोग ने देखा कि ये अमिता घोष जी ने अपने फ्रेंड आगा शाहिद अली के लिए लिखा है, क्योंकि वो जो है उनको ब्रेन कैंसर था, ब्रेन ट्यूमर था, और वो जो है उनकी वो आखिरी इच्छा ये थी कि अमिताभ जी उनके बारे में लिखें, सो दैट कि वो अमर हो सके, सिर्फ उनके फ्रेंड बन के उनकी यादों में नहीं बल्कि लिटरेचर में भी, ताकि जब जब उन्हें वो कोई पढ़े तब तब आगा अली जी को हम लोग याद कर सकें। और अब तक हम लोगों ने देखा कि आगा अली जी जो थे वो बहुत ही एक जिंदा दिल इंसान थे। वो हमेशा अपने अपार्टमेंट में पार्टीज रखा करते थे, दावतें रखते थे, और उन्हें लोगों से घिरा हुआ अपने आप को वो मतलब लेस डिप्रेस फील करते थे, है ना। वो उनका जो भी जो बीमारी से उनको जो भी तनाव होता था वो अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके उस चीज़ से वो बाहर निकलना चाहते थे। उनके जो बाकी भी फ्रेंड्स थे जैसे कि सुकेतु मेहता और अमिताभ घोष और भी कुछ राइटर्स मिला करके वो लोग अपना एक अड्डा चूज कर रहे थे और वहाँ पे वो हमेशा जाया करते थे हैंग आउट करने के लिए। राइटर की मुलाकात तब हुई उनसे, मतलब पहले भी मुलाकात हो चुकी थी लेकिन ज़्यादा जान पहचान तब हुई जब जो आगा जी हैं वो शिफ्ट कर गए थे ब्रुकलिन अपनी बीमारी के बाद, क्योंकि वो अपने जो करीबी लोग हैं उनके साथ रहना चाहते थे, और तभी उनकी जान पहचान बढ़ी। और उसी में से एक दिन जो है आगा अली जी ने अमिताभ घोष से ये रिक्वेस्ट करा कि उन्हें उनके बारे में लिखना पड़ेगा उनकी मृत्यु के बाद। तो हम लोग अभी तक ये जानते हैं कि उन्हें खाने का बहुत शौक था और इस वजह से वो रोगन जोश जो कि एक डिश होती है, नॉनवेज डिश, तो वो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी रहते थे और उन्हें सूंघ करके पता चल जाता था कि वो डिश अच्छे से बनी है कि नहीं बनी है, उसमें क्या कमी है, क्या एक्स्ट्रा हो गया, ये सारी चीज़ें। और राइटर, ये दोनों राइटर के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉमन चीज़ें भी थी, जैसे कि उन दोनों को किशोर कुमार के गाने पसंद थे, बेगम आरा की पोएट्री, सॉरी रोशन आरा की पोएट्री भी पसंद थी, ये सारी चीज़ें। और हमें एक और बात पता चलती है कि जो जेम्स मेरिल थे उनकी मुलाकात हुई थी शाहिद अली से एरिजोना में इसी दावत के ही चक्कर में, और उन्होंने अपनी पोएम्स में उनके इन्फ्लुएंस को माना और इनफैक्ट अपने पोएम में ही उन्होंने अपनी डेथ प्रेडिक्ट करी, और उस चीज़ को मतलब अपने पोएम में जेम्स मेरिल को जगह दी और ये कहा कि शाहिद हश, दिस इज़ मी जेम्स, द लव्ड वन ऑलवेज लीव्स। तो मतलब उन्होंने अपनी पोएम के एक लाइन में जेम्स को मेंशन करा है और उन्होंने कहा है कि शाहिद चुप रहो, थोड़ा सा सुनो, मैं जेम्स हूँ और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे नियर एंड डियर वंस हैं, जो कि तुम्हारे प्यारे लोग हैं, जो तुम्हारे सबसे करीब हैं, वो आज नहीं तो कल तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। सो अगेन हम लोग अभी पेज नंबर 58 पे थे, लास्ट पैराग्राफ, हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। Shahid placed great store on authenticity and exactitude in cooking and would tolerate no deviation from traditional methods and recipes. For those who took shortcuts, he had only pity. He had a special passion for the food of his region, one variant of it in particular, Kashmiri food in the Pandit style. I asked him once why this was so important to him, and he explained that it was vanished from the valley of Kashmir and their food had become extinct. This was a nightmare that haunted him and he returned to it again and again in his conversation and his poetry. So again, Shahid ko jo hai, wo authenticity, matlab jis tarah se jo paramparik jo hota aaya hai khane mein specially, wo unhe waise hi cheeze pasand thi, unhe koi modification nahi chahiye tha, hai na. Aur jo shortcuts lete the wo un pe daya khate the, ki matlab wo unko lagta tha ki bhai khane banane mein koi bhi shortcut nahi hona chahiye. ओके, सो अगेन वो उनका जो एक फेवरेट स्टाइल था वो था कश्मीरी फूड एंड पंडित स्टाइल। सो हमें पता है कश्मीरी पंडित की स्टोरी कि उन्हें जो है वो कश्मीर से निकाल दिया गया था, और उसी के जैसे वो वहां से निकले तो उनके साथ साथ उनका जो खाना बनाने का तरीका था वो भी वहां से कश्मीर की वादियों से वो भी निकल गया। और ये जो है वो शाहिद के लिए काफी ज्यादा एक काफी बहुत ही एक बुरा एक्सपीरियंस था, और वो ये कभी नहीं चाहते थे कि ऐसी कोई भी कश्मीर का कल्चर है वो बिल्कुल गुम हो जाए, गायब हो जाए। इस वजह से वो अपने ही प्रैक्टिस में उसको जिंदा रखना चाहते थे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप जो आगे आने वाले कुछ लाइन देखोगे वो शाहिद की ही पोएम का कुछ पार्ट है जो कि उन्होंने कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसको पहले पोएम, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। At a certain point, I lost track of you. You needed me. You needed to perfect me. In your absence, you polished me into the enemy. Your history gets in the way of my memory. I am everything you lost, your perfect enemy. Your memory gets in the way of my memory. There is nothing to forgive. You won't forgive me. I hid my pain even from myself. I revealed my pain only to myself. There is nothing to forgive. You won't forgive me. If only somehow you could have been mine, what would not have been possible in the world? So, यहाँ पे वो कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। मैं तुम्हारे लिए एक परफेक्ट इंसान था, और तुम्हें कहीं ना कहीं मेरी जरूरत थी अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए। तुमने मतलब मेरी एब्सेंस में तुमने जो है वो मुझे एक अपना दुश्मन मान लिया, और तुम्हारी जो हिस्ट्री है वो मेरी मेमोरी में है, यानी कश्मीर की हिस्ट्री जो है वो उनकी यादों में है। तो अक्सर ये यादें मतलब कश्मीर को इनकी याद आती है और इन्हें कश्मीर की याद आती है, और इन दोनों की जो यादें हैं वो बीच में टकराती हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं जो कि तुम मुझसे माफ कर सको, और तो मुझे माफ कर भी नहीं सकते। इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं, अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या ही गलती करी और वो कश्मीर से क्यों ही माफी मांगे। लेकिन फिर भी कश्मीर उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि कश्मीर को उनकी जरूरत थी, उनके टैलेंट की जरूरत थी, ताकि वो कश्मीर में रह करके ही कुछ बनाते, है ना। तो इसी वजह से वो एक लाइन बोलते हैं कि देयर इज नथिंग टू फॉरगिव, यानी माफ करने लायक कुछ है भी नहीं, क्योंकि कश्मीर कोई इंसान तो नहीं है ना, तो माफ करने लायक कुछ है भी नहीं। और उन्हें यह भी पता है कि कश्मीर उन्हें उनकी गलती के लिए कभी माफ करेगा भी नहीं, क्योंकि वो दोनों एक परफेक्ट मतलब कॉम्बिनेशन थे, कश्मीर और आगा अली एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन थे। लेकिन उन्होंने ही क्योंकि वो लिंक तोड़ दिया, वो जो है वो अमेरिका चले गए, और इस वजह से वो हमेशा गिल्टी फील करते आएंगे। और वो ये भी कहते हैं कि मुझे ये बात पता है कि अगर हम दोनों साथ रहते, यानी वो कश्मीर में रहते हुए कुछ करते, तब दुनिया की हर चीज पॉसिबल थी, है ना। तो आप देख सकते हो कि वो कितना ज्यादा अटैच थे, और वो अपने कल्चर को हमेशा बढ़ावा देना चाहते थे, हमेशा जिंदा रखना चाहते थे। Once in conversation, he told me that he also loved Bengali food. I protested, but Shahid, you have never been even to Calcutta. No, but we had friends who used to bring us that food. When you ate it, you could see that there were so many things that you didn't know about everywhere in the country. But what I say is, why can't you be happy with the cuisines and the clothes and the music, all these wonderful things? He paused and added softly. At least here we have been able to make a space where we all can come together because of the good things. Of the many good things in which he took pleasure, none was more dear to him than the music of Begum Akhtar. He had met the great ghazal singer when he was in his teens through a friend, and she had become an abiding presence and influence in his life. Shahid had a fund of stories about her sharpness in repartee. Shahid was himself so mean practitioner of repartee. On one famous occasion at Barcelona airport, he was stopped by a security guard just as he was about to board a plane. The guard, a woman, asked, "What do you do?" "I'm a poet," Shahid answered. "What were you doing in Spain?" "Writing poetry." No matter what the question, Shahid worked poetry into his answer. Finally, exasperated woman asked, "Are you carrying anything that could be dangerous to the other passengers?" At this, Shahid clapped a hand to his chest and cried, "Only my heart." This was one of his great Wildean moments, and it was to occasion the poem Barcelona Airport. He treasured these moments. "I long for people to give me an opportunity to answer questions," he told me once. On 7th May, I had the good fortune to be with him when one such opportunity presented itself. Shahid was teaching at Manhattan's Baruch College in the spring semester of 2000, and this was to his last class, indeed the last he was ever to teach. The class was to be a short one, for he had an appointment at the hospital immediately afterwards. I had heard a great deal about the brilliance of Shahid's teaching, but this was the first time and only time that I want to see him perform in a classroom. It was evident from the moment he walked in the classroom that the students adored him. They had printed a magazine and dedicated the issue to him. Shahid, on his part, was not in the least subdued by the sadness of the occasion. From beginning to the end, he was a sparkling diva, Akhtar incarnated, brimming with laughter and nakhra. When an Indian student walked in late, he greeted her with the cry, "Ah, my little subcontinental has arrived." Clasping his hand, he feigned a swoon. It stirs such a tide of patriotism in me to behold another South Asian. So again, यहाँ पे जो है वो राइटर कहते हैं कि एक बार की बात है, जब वो बातचीत हो रही थी उनके बीच में, तब शाहिद ने उन्हें एक और बात बताई कि उन्हें बंगाली खाना काफी पसंद। तभी राइटर ने उनसे पूछा कि भाई तुम तो आज तक कभी कलकत्ता तक नहीं गए, तो तुम्हें बंगाली खाना के बारे में इतना कैसे पता है? तो उन्होंने बताया कि उनके कुछ फ्रेंड्स थे जो उन्हें बंगाली फूड बना करके खिलाया करते थे, और तभी उन्होंने बताया कि हम लोग अपनी कंट्री में ही कितनी सारी चीज है जो आज तक एक्सप्लोर नहीं करी है, कितने सारे कुजींस है, यानी खुद इंडिया में ही कितना कुछ है देखने के लिए अभी बचा हुआ। अब जो है वो शाहिद जो थे ना, वो राइटर बताते हैं कि वो हर जगह पोएट्री ढूंढ लेते थे, और वो अपनी हर कॉन्टेक्स्ट में, हर बात में पोएट्री को, यानी कविता को अपना एक आंसर बनाना चाहते थे। तो वो एक बार की बात है कि बार्सिलोना एयरपोर्ट पे उन्हें सिक्योरिटी गार्ड ने जब रोका और उनसे पूछा कि तुम क्या करते हो, तुम कौन हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जो हूँ वो एक राइटर हूँ, एक पोएट हूँ, एक कवि हूँ, और मैं स्पेन भी जो है वो कविता लिखने गया था। तब जो सिक्योरिटी गार्ड थी, यानी जो लेडी थी, वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होकर के पूछती है कि नहीं, मैं एक्चुअली पूछना चाह रही हूँ कि कहीं तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीज तो नहीं जिससे बाकी पैसेंजर्स को जो है वो तकलीफ हो सकती है। तब उन्होंने कहा कि बस मेरा दिल है, क्योंकि वो पोएट थे, इस वजह से उनका आंसर भी जो था वो काफी पोएटिक हुआ करता था। और तभी जो है उन्होंने एक और पोएम लिखी, द बार्सिलोना एयरपोर्ट। तो ये पोएम का टाइटल जो है वो इसी इंसिडेंट के बाद उन्होंने डाला। तब वो जो 7th May की बात है कि वो उनके बारे में ये बहुत ज्यादा मशहूर था कि वो काफी अच्छे टीचर थे, जो आगा अली थे वो काफी अच्छे टीचर थे, और जो हमारे राइटर हैं अमिताभ, उन्हें जो है वो मौका मिला वो पहली और आखिरी बार था, क्योंकि वो आगा का लास्ट क्लास था, क्योंकि उसके बाद जो है वो कोई और क्लास लेने के हालत में नहीं थे, बिकॉज उनको उनका जो कैंसर था वो बढ़ रहा था। सो अगेन वो उनको अपॉर्चुनिटी मिली कि उनका वो पहला और आखिरी क्लास वो देख पाए अमिताभ, और तभी जो है जैसे ही वो क्लास में एंटर हुए, वो उन्होंने वो चीज को, वो क्लासरूम को ओन कर लिया, यानी उसे अपना बना लिया। और जिस तरह से वो मस्ती मजाक में करते हुए, और वो उन्हें दिखा कि वो सारे स्टूडेंट्स जो है वो आगा को कितना ज्यादा पसंद करते थे, है ना। तो इनफैक्ट वो क्लास में बीच बीच में मजाक भी किया करते थे, उनका स्टाइल जो था वो काफी अच्छा था। तो उसी का एक इंसिडेंट वो बताते हैं कि जब एक और इंडियन लड़की जब क्लास में लेट पहुंची तो उन्होंने अपने लाइक फेलो सब कॉन्टिनेंट मेंबर करके उसको ग्रीट करा, और वो काफी ज्यादा उसको इस चीज के लिए खुश भी हुए कि मुझे काफी अच्छा लगता है अगर कोई मेरे ही देश से मुझे मिले। ऑफकोर्स जब हम लोग अपने वतन से अपने देश से दूर रहते हैं तब जो है हमें अपने वतन के और अपने वतन के लोगों की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस फील होती है। और उनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक मैगजीन बनाई थी और जिसका फर्स्ट इशू जो है वो आगा खान को प्रेजेंट करा, जबकि काफी ज्यादा एक इमोशनल उनके लिए वक्त था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सारी चीजें साइड कर दी और फिर उस उन अपने लास्ट डे को इमोशनल ना होते हुए एक बहुत ही खुशनुमा एक एक्सपीरियंस बनाया। हिज टाइम एट पेन स्टेट ही रिमेम्बर्ड विद अनमिटिगेटेड प्लेजर। आई ग्रू एज अ रीडर, आई ग्रू एज अ पोएट, आई ग्रू एज अ लवर। ही फेल इन विद अ वाइब्रेंट ग्रुप ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ हूम वर इंडियंस। दिस वॉज, ही ऑफन सेड, द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ। Later, Shahid moved to Arizona to take a degree in creative writing. This in turn was followed by a series of jobs in college and universities, Hamilton College, the University of Massachusetts at Amherst, and finally the University of Utah in Salt Lake City, where he was appointed professor in 1999. He was on leave from Utah during a brief stint at New York University when he had his first blackout in Feb 2000. After 1975, when he moved to Pennsylvania, Shahid lived mainly in America. His brother was already there and they were later joined by their two sisters. But Shahid's parents continued to live in Srinagar and it was his custom to spend the summer months with them there every year. I always move into my heart between sad countries. Traveling between the United States and India, he was thus an intermittent but first-hand witness to the mounting violence that seized the region from the late 1800s onwards. It was 89, the stones were not far, signs of change everywhere. Kashmir would soon be in literal flames. The steady deterioration of the political situation in Kashmir, the violence and the counter-violence had a powerful effect on him. In time, it became one of the central subjects of his work. Indeed, it could be said that it was in writing of Kashmir that he created his finest work. The irony of this is that Shahid was not by inclination a political poet. I heard him say once, "If you are from a difficult place and that's all you have to write about, then you should stop writing. You have to respect your art, your form. That is just as important as what you write about." So, अभी पैराग्राफ में हमें कुछ उनके बारे में पता चलता है, उनके एजुकेशन के बारे में कि उन्हें कहाँ कहाँ उन्होंने जॉब करी, जैसे कि हैमिल्टन कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स, और फिर लास्टली जा कर के उन्हें उता यूनिवर्सिटी में जो 1999 में वो प्रोफेसर अपॉइंट हुए। तब वो जो है वो 1975 में पेनिसलिवेनिया में वो शिफ्ट हुए, उनके भाई ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे थे और फिर उनकी जो दो बहनें थी उन्होंने भी उन्हें अमेरिका में ज्वाइन कर लिया, लेकिन उनके जो पेरेंट्स थे वो अभी भी जो है वो श्रीनगर में ही रहते थे। तो वो उनका एक रूटीन था कि वो जो गर्मी की छुट्टियाँ होती थी वो अपने पेरेंट्स के साथ इंडिया में गुजारते थे और वो हमेशा जो है वो ट्रैवल करते रहते थे अमेरिका एंड देन फिर इंडिया, और वो कश्मीर को इतना ज़्यादा वो देख रहे थे अपनी आंखों के सामने उसको डिस्ट्रॉय होते हुए। उस वक्त बहुत सारी वॉर था, ये था वो था। इनफैक्ट यहाँ पे आप देखोगे इट वॉज 89, द स्टोन्स वर नॉट फार, साइंस ऑफ चेंज एवरीवेयर। तो ये जो है वो उनकी जो पोएम है कश्मीर वुड सून बी इन लिटरल फ्लेम्स, यहाँ से ये एक लाइन ली गई है जो बताती है कि 89 का वक्त है, 1989 का, जब जो है वो स्टोन्स यानी मतलब वॉर स्टार्ट हो रही है और कश्मीर का जो कायाकल्प है वो बिल्कुल पलटने वाला है। और उनका ये कहना था कि वो कभी भी पॉलिटिकल पोएट नहीं थे, लेकिन क्योंकि वो एक ऐसी वॉर प्रोन जगह से आते थे यानी कश्मीर से आते थे, तो वो ना चाहते हुए भी उनकी पोएम्स जो है वो पॉलिटिकल हो जाती थी, जबकि उनका कोई ऐसा इरादा नहीं रहता था। Anguished as he was about Kashmir's destiny, Shahid refused to embrace the role of victim that could so easily have been his. He had done so, he could no doubt have easily become a fixture on talk shows and news programs, but Shahid never had any doubt about his calling. He was a poet, schooled in the fierce and unforgiving art of language. Although respectful of religion, he remained a firm believer in the separation of politics and religious practice. Shahid's case was not political in the sense of being framed in terms of policy and solutions. In the broadest sense, his vision tended always towards the inclusive and ecumenical, an outlook that he credited to his upbringing. He spoke often of a time in his childhood when he had been seized by the desire to create a small Hindu temple in his room in Srinagar. He was initially hesitant to tell his parents, but when he did, they responded with enthusiasm equal to his own. His mother brought him the murtis and other accoutrements, and for a while he was fastidious in conducting pujas at this shrine. This was a favorite story. Whenever people talk to me about Muslim fantasism, he said to me once, I tell him how my mother helped me making a temple in my room. I once remarked to Shahid that he was the closest that Kashmir had to a national poet. He shot back, a national poet maybe, but not a nationalist poet. Please, not that. In the title of the poem, The Country Without a Post Office, a poet returns to Kashmir to find the keeper of a fallen minaret. Nothing will remain, everything's vanished. I see his voice again. This is a shrine of words. You will find your letters to me and mine to you. Come, son, and tear open these vanished envelopes. This is an archive. I have found the remains of his voice, the map of longings with no limit. In this figurine of his homeland, he himself became one of the images that was spinning around the dark points of stillness. Both Shahid and Shahid, witness and martyr, his destiny inextricably linked with Kashmir's, each prefigured by the other. I will die in autumn in Kashmir, and the shadowed routine of each vein will almost be news, the blood censored for the saffron sun and the times of rain. Among my notes and a record of a telephone conversation on 5th May, the day before he had gone to the hospital for an important test, a scan that was expected to reveal whether or not the course of chemotherapy that he was then undergoing had had the desired effect. All other alternative therapies and courses of the treatment had been pulled off until this report. So again, वो जो हैं वो इस बात से हमेशा से deny करते आए कि जो वो एक political poet तो कभी थे नहीं. In fact, जब उन्होंने कहा कि तुम जो हो वो एक कश्मीर के एक national poet बन सकते थे, तो उन्होंने जल्दी से कहा कि हाँ, मैं भले ही national poet बन सकता था, लेकिन nationalistic poet कभी नहीं बन सकता, क्योंकि उन्हें कोई भी political angle इस चीज़ को अपने आर्ट को देना ही नहीं था. वो चाहते तो वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के साथ फेमस हो सकते थे, क्योंकि वो आई विटनेस रहे हैं जो भी हैपनिंग्स हुई हैं कश्मीर में. लेकिन वो कभी भी टॉक शो या इस तरह पे, मतलब जहाँ पे भी उन्हें कोई पॉलिटिकल एंगल मिल सकता था, वो हमेशा उन्होंने उन चीज़ों को अवॉइड करा. उनका हमेशा मानना था कि जो रिलीजन है वो पॉलिटिक्स से हमेशा दूर रखना चाहिए, और इसी को लेकर के उन्होंने श्रीनगर में अपने कमरे में ही एक पूजा घर बनाया था, और उसकी मदद जो है उनकी माँ ने करी थी. कि उन्हें पहले डर लग रहा था कि क्योंकि वो एक मुस्लिम फैमिली में थे, वो एक मुस्लिम थे और वो अपने घर में पूजा घर बनाना चाहते थे, तो उन्हें डर लग रहा था कि उनके पेरेंट्स जो है वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे. लेकिन उनकी खुद की माँ ने उन्हें वो मंदिर बनाने में हेल्प भी करी, और जब भी कोई उन्हें जो है वो रिलीजन और कश्मीर का जो भी कुछ वो बताना चाहता था, उस पर डिबेट करना चाहता था, वो हमेशा उन लोगों को ये स्टोरी बताते थे कि किस तरह से उनकी खुद की माँ ने, उनकी एक मुस्लिम माँ ने उनको हेल्प करा मंदिर बनाने में, वो भी अपने घर में ही. सो अगेन, हमें यहाँ पे जो है उनका एक द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, ये जो पोएम है, वहाँ से एक एक्सट्रैक्ट यहाँ पे मिलता है, नथिंग विल रिमेन एवरीथिंग विल फिनिश. तो ये जो एक्सट्रैक्ट है वो ये बताना चाहता है कि मतलब सब कुछ वहाँ पे तहस नहस हो चुका है. वो एक ऐसे पोस्ट ऑफिस के बारे में है जो कि मतलब सॉरी एक पोएट के बारे में है जो कि कश्मीर लौटता है और देखता है कि वहां पे तो तबाही मची हुई है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है. तो अगेन इस पोएम में हमें बताया जा रहा है कि किस तरह जो है वो बहुत टाइम बाद वो पोएट लौटता है और देखता है कि सब कुछ जो भी वहां पे चीजें थी, जो लोग थे जिनका लेटर्स उसको देना था, वो सारे लोग तो बचे ही नहीं है और ये सारे जो भी मैसेजेस हैं वो बस एक हिस्ट्री बन के रह गए. तो अगेन यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात बताई जा रही है कि जो शाहिद, शाहिद का मतलब होता है विटनेस, उसका जो मतलब ये एक अरबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है विटनेस यानी गवाह. तो शाहिद जो था वो गवाह भी था और शहीद भी था. शहीद का पता है हमें मतलब मटायर, तो वो दोनों विटनेस भी थे और मटायर भी थे, है ना. तो इसी वजह से उन्होंने एक और पोएम का यहाँ पे वर्णन किया है, आई विल डाई इन ऑटम इन कश्मीर एंड द शैडोड रूटीन ऑफ ईच वेन विल ऑलमोस्ट बी न्यूज द ब्लड सेंसर्ड फॉर द सैफरन सन एंड द टाइम्स ऑफ रेन. सो अगेन वो कह रहे हैं कि वो खुद जो है वो इसके एक शिकार हो चुके हैं, वो एक विटनेस भी हैं और वहीं पे उनका जो है वो उनको वो शहीद भी वहीं पे हो जाते हैं और मतलब हर चीज़ जो है उनकी मौत भी जो है वो एक सेंसर कर दी जाएगी, है ना. तो काफ़ी सारी डीप पोएम्स हैं जो उन्होंने कश्मीर को फील करके लिखी हैं, वहाँ के जो सिचुएशन थी उस पर लिखी है. तो अगेन यहाँ पे एक और बात होती है कि 5 मई को उनकी एक स्कैन की रिपोर्ट आनी थी जो कि बताते हैं कि बाकी सारे जो भी हम लोग जो रिजल्ट चाह रहे हैं वो वैसा रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं, और तब तक उनकी बाकी सारी जो रिपोर्ट थी वो रोक दी गई थी. द स्कैन वॉज शेड्यूल्ड फॉर 2:30 इन द आफ्टरनून. आई कॉल्ड हिज नंबर सेवरल टाइम्स इन द लेट आफ्टरनून एंड अर्ली इवनिंग. देर वॉज नो रिस्पॉन्स. आई कॉल्ड अगेन द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड दिस टाइम ही आंसर्ड. There were no preambles. He said, "Listen, Amrita, the news is not good at all. Basically, they are going to stop my all medicines now, the chemotherapy and so on. They will give me a year or less. They had suspected that I was not responding well because of the way I look. They will give me some radiation a little later, but they said there was not much hope. Days, staring blankly at my desk, I said, What will you do now, Shahid? I would like to go back to Kashmir to die. His voice was quiet and untroubled. Now I have to get my passport, settle my will and all that. I don't want to leave a mess for my siblings. But after that, I would like to go to Kashmir. It's still such a feudal system there and there will be so much support. And my father is there too. Anyway, I don't want my siblings to have to make the journey afterwards like we have to with my mother. Later, because of logistical and other reasons, he changed his mind about returning to Kashmir. He was content to be laid to rest in Northampton in the vicinity of Amherst, a town scared to the memory of his beloved Emily Dickinson. But I do not think it was an accident that his mind turned to Kashmir. In speaking of death, already in his poetic imagery, death, Kashmir and Shahid Shaheed had become so closely overlaid as to inseparable, like an old photograph that have melted together in the rain. Yes, I remember it. The day I will die, I broadcast the crimson so long ago to the sky. It spread air, its rushing dyes and a piece of earth bleeding apart from the shore as we went on the day I'll die. Both the gods and he, keeper of the world's last saffron, rode me on an island to size of a grave. On 2 yards, he rode me into the sunset, past all pain. On everyone's lips was news of my death, but only that beloved couplet broken on his. If there's a paradise on earth, it is this, it is this, it is this. The last time I saw Shahid was on 27th October, at his brother's house in Amherst. He was intermittently able to converse and there were moments when he talked just as we had in the past. He was aware, as he had long been, of his approaching end and he had made his peace with it. I saw no trace of anguish or conflict, surrounded by the love of his family and friends. He was calm, contented, at peace. He had said to me once, "I love to think that I'll meet my mother in the afterlife, if there's an afterlife." I had the sense that as the end neared, this was his supreme consolation. He died peacefully in his sleep at 2 a.m. on 8th December. So, यहाँ पे एक बात होती है कि जैसे ही अब मतलब जो स्कैन के रिपोर्ट्स आने थे वो आ गए और सब लोग उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे थे. तो अगेन जब अमिताभ घोष ने उनको कॉल करा उनका हाल चाल पूछने के लिए, तो उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बिना किसी हाय हेलो के उन्हें ये बता दिया कि जो न्यूज़ है वो अच्छी नहीं है, रिपोर्ट अच्छी नहीं है. वो उन्होंने जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने सारे मेडिकेशन ये सब कुछ कीमोथेरेपी सब कुछ रोक दिया है और उन्होंने मुझे बताया है कि मेरे पास एक साल है जीने के लिए. और उन्हें उनको कुछ रेडिएशन जो है वो कुछ टाइम बाद मिलने वाली है. तो अगेन वो उनको पता था कि उनका जो एंड है वो नज़दीक है, यानी उनकी लाइफ ख़त्म होने वाली है. और उसको उनको किसी भी चीज़ का मलाल नहीं था कि वो मरने वाले या कुछ भी. वो अभी भी जो है वो खुश थे इस बात में कि उनके जो फैमिली फ्रेंड्स और जो भी उनके खास लोग हैं वो उनके पास हैं. इनफैक्ट वो चाहते थे कि वो जो है वो कश्मीर में जाकर के अपनी लास्ट डेज जो है वो स्पेंड करें, अपनी आखिरी सांस कश्मीर में ले. लेकिन फिर जो है वो कुछ चीज़ों के वजह से, कुछ रिस्ट्रिक्शन के वजह से उन्होंने वापस डिसाइड करा कि नहीं, वो जो है वो फिर से वो यहीं पर रहेंगे. और जो एमिली डिकिंसन, अगेन एक और बहुत अच्छी पोएट अमेरिकन ओरिजिन की, वो वहीं पर दफन होना चाहेंगे, है ना. तो अगेन उन्होंने जो भी विल वगैरह जो भी कुछ थी उन्होंने सब कुछ लिख दिया बिफोर हैंड ही, बिकॉज वो वेट नहीं करना चाहते थे. वो बिल्कुल एक प्रैक्टिकल इंसान थे. वो जानते थे कि अब वो नहीं बचने वाले हैं, तो उन्होंने वो चीज़ एक्सेप्ट कर लिया था. और वो अपनी मौत को काफ़ी टाइम पहले से ही वो प्रेडिक्ट कर रहे थे और उन्होंने अपनी मौत के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी थी. और कहीं ना कहीं उनकी मौत और कश्मीर की मौत एक एक जगह पे आकर के मिल जा रही थी. वो जो उनकी पोइट्री थी वहाँ पे, उनकी पोइट्री में वो दिखा रहे थे. आपने यहाँ पे भी देखा, यस आई रिमेम्बर इट, द डे आई विल डाई. तो ये कहीं ना कहीं वो कश्मीर किस तरह से मर रहा है वो भी दिखा रहे थे, और वो किस तरह से मर रहे हैं वो भी अपनी पोएम में दर्शा रहे थे. तो अगेन जो लास्ट टाइम जो राइटर ने उन्हें देखा था वो 27 अक्टूबर को देखा था उनके भाई के घर पे. और तभी भी जो है वो काफ़ी खुश ही नज़र आ रहे थे, क्योंकि उन्हें कोई शिकायत नहीं थी ज़िंदगी से. उन्हें पता था कि अब वो मरने वाले हैं, और इसी वजह से वो राइटर को कहा करते थे कि अगर कोई मौत के बाद भी अगर ज़िंदगी होती है, यानी जो आफ्टर लाइफ होती है, तो वो वहाँ अपनी मदर से मिलना चाहेंगे. और इतना ही, उनकी एक बहुत ही पीसफुल तरीके से 2 बजे रात को, 8 दिसंबर को 2 बजे रात को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और वो नींद में ही गुजर गए. नाउ इन हिज एब्सेंस आई एम अमेज्ड दैट सो ब्रीफ अ फ्रेंडशिप हैज रिजल्टेड इन सो वास्ट अ वॉइड. ऑफन व्हेन आई वॉक इनटू माय लिविंग रूम आई रिमेंबर हिज प्रेजेंस देयर, पर्टिकुलरली ऑन द नाइट व्हेन ही रेड अस हिज फेयरवेल टू द वर्ल्ड. आई ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड. सो अब जबकि जो उनके बहुत ही प्रिय मित्र थे आगा अली, वो अब जब दुनिया से जा चुके, तो अभी भी जो है उन्हें बहुत सारी उनकी मेमोरीज हैं जो कि अभी भी उन्हें याद आती है. वो जहाँ पे जब वो अपने लिविंग रूम को देखते हैं तब उन्हें वो वहाँ का उनका जो प्रेजेंस है वो महसूस होता है कि यहीं पे वो बैठा करते थे. और स्पेशली वो टाइम याद आता है जब उन्होंने अपनी फेयरवेल पोएम उन सभी लोगों के सामने पढ़ी थी, जिसका नाम था आई ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड. मतलब वो उन्होंने उस पोएम में अपनी ही डेथ प्रिडिक्ट करी थी और उन्होंने कहा था कि मैं जो हूँ अब जिंदगी के किनारे पे हूँ. और इनफैक्ट वो अपने लास्ट पोएम में भी उन्होंने कश्मीर का वर्णन किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं. उन्होंने कहा कि ऑन एवरीवन्स लिप्स वाज न्यूज़ ऑफ माय डेथ बट ओनली दैट बिलव्ड कपल ब्रोक ऑन हिज. मतलब हर किसी के जबान पे उन्हें पता था कि उनके डेथ के बारे में चर्चा होगा, लेकिन उनके जबान पे वही दो लाइनें होगी कि अगर कहीं जन्नत है तो यही है। इफ देयर इज अ पैराडाइज ऑन अर्थ, इट इज दिस। यानी वो मरते मरते भी उनके जबान पे सिर्फ और सिर्फ कश्मीर ही रहा। और यहाँ पे हमारे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ये काफी एक इमोशनल चैप्टर था। ये जो है वो ये चैप्टर आपको फ्रेंडशिप और कमिटमेंट का की दास्तान सुनाता है ना, कि वो कितने कनेक्टेड थे अपने दोस्त से, और उनके उन्होंने जो कमिट किया था अपने दोस्त को कि उनके मरने के बाद वो जो है उनके बारे में लिखेंगे, वो उन्हें हमेशा जो है वो लिटरेचर में जिंदा रखेंगे। उन्होंने अपनी कमिटमेंट पूरी करी और उनके बारे में ये चैप्टर लिखा। सो यहाँ पे हमारे पास बच जाते हैं 3 questions। तो हम लोग ये 3 question कर लेते हैं ताकि हम लोग इस चैप्टर में जो भी कुछ मिस आउट हो गया वो कवर अप कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इम्प्रेशंस ऑफ शाहिद डू यू गैदर फ्रॉम द पीस। सो ऑफकोर्स शाहिद जो है वो एक बेखौफ पोएट थे। उन्हें जरा भी डर नहीं था कि उनकी पोयम को जज किया जाएगा या फिर उन्हें रीडर फ्रेंडली बनाना चाहिए। उनके जो थॉट्स थे वो एग्जैक्टली वो थॉट को लिखा करते थे। वो बहुत ही बेबाक थे और साथ ही साथ वो एक जिंदा दिल इंसान भी थे। जैसे मैंने आपको बार बार बताया है कि वो जहाँ जाते थे वहाँ पे वो खुशियाँ बिखेर देते थे, भले ही वो खुद एक लास्ट स्टेज पे थे मरने के, लेकिन फिर भी वो जहाँ भी जाते थे हर कुछ एक खुशनुमा एक्सपीरियंस बना देते थे, है ना। उन्हें खाना काफ़ी पसंद था और वो अपने हेरिटेज को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्राउड थे, है ना, कि वो हमेशा कश्मीर को अपनी प्रैक्टिसेस में जिंदा रखना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू शाहिद एंड द राइटर रिएक्ट टू द नॉलेज दैट शाहिद इज गोइंग टू डाई। सो ऑफकोर्स जब आपके कोई इतना करीब कोई इस जगह पे हो कि वो बिल्कुल मरने वाला हो, तब आप उसे क्या कह सकते हैं। तो राइटर ने भी जो है वो काफ़ी एक जो हर कोई ऐसे सिचुएशन में कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, उन्हें तसल्ली देने के लिए वो बिल्कुल वैसा ही करा कि उन्होंने भी राइटर ने भी शाहिद को तसल्ली दी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उन्हें पॉजिटिव रखने की कोशिश करी। लेकिन अंदर ही अंदर ये बात अमिताभ घोष जी को भी जो है वो काफी खा रही थी कि उनके इतने ज्यादा प्रिय मित्र वो बिल्कुल वो उनके आंखों के सामने मर रहे थे और वो उनके बारे में कुछ कर नहीं सकते थे उन्हें बचाने के लिए, लेकिन उनकी जो कमिटमेंट थी वो एटलीस्ट उन्होंने पूरी करी। क्वेश्चन नंबर 3, लुक अप द डिक्शनरी फॉर द मीनिंग ऑफ द वर्ड डायस्पोरा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ द इंडियन डायस्पोरा फ्रॉम दिस पीस। सो डायस्पोरा क्या होता है कि वो आप समझ लो कि बेघर होना या अपने ही होमलैंड से अलग होना, वो कहा जाता है, उसका मतलब होता है डायस्पोरा। तो अगेन इंडियन डायस्पोरा कैसे है कि जो कश्मीर के लोग थे, जो कश्मीरी पंडित थे, उनको अपने ही जगह से बेदखल कर दिया गया, है ना, बेघर कर दिया गया, बेदखल कर दिया गया। तो इंडियन डायस्पोरा जो है वो कश्मीर का ही हमें इस पीस में दिखता है, इस आर्टिकल में दिखता है, एब्स्ट्रैक्ट में, कि किस तरह से कश्मीरी लोग जो हैं उनको उन्हीं की जगह से निकाल दिया गया और कुछ और लोग वहां आकर के घर बसाने लगे और कुछ और लोग वहां पे आकर के हुकूमत करने लगे, रूल करने लगे, वहां पे कश्मीर के माहौल को गंदा कर दिया, वहां पे वॉर करने लगे, है ना। तो आप जो है इस आंसर में काफी कुछ लिख सकते हैं। अनदर चीज जो एक और क्वेश्चन जो इस चैप्टर को देख करके आपको लिखना चाहिए वो कि ये स्टोरी का थीम क्या है, है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टोरी का थीम क्या है, फ्रेंडशिप और जो कमिटमेंट थी वो, और साथ ही साथ मतलब किस तरह से आप भले ही अपनी जगह को, अपने वतन को, अपने देश को छोड़ दो, लेकिन देश आपको कभी नहीं छोड़ पाता, वो हमेशा आपकी मेमोरी में रहता है। सो अगेन आई थिंक आप लोगों को इस एक और क्वेश्चन के लिए रेडी रहना चाहिए कि ये थीम क्या है इस पीस की, स्टोरी की। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन जो कि स्टोरी से अराइज होता है वो इसके टाइटल के बारे में है कि आप द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड को किस तरह से जस्टिफाई करोगे एज अ टाइटल ऑफ द स्टोरी, है ना। तो आई होप कि आप लोग ये सारा आराम से लिख पाओ, बिकॉज इट इज ईजी कि अब हमें समझ आता है जब हम लोग स्टोरी पूरी पढ़ चुके हैं तो इस स्टोरी का नाम द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड क्यों है, क्योंकि वो बिल्कुल मौत के किनारे खड़े थे और इस वजह से इस स्टोरी का ये नाम है। ओके, सो ये काफ़ी इमोशनल स्टोरी थी और काफ़ी कुछ हमें सिखा जाती है कि हमें हर वक्त जो है वो वी शुड लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, अपनी ज़िंदगी भरपूर जीनी चाहिए, क्योंकि कब क्या हो जाए हमें नहीं पता है ना। तो आप इसके क्वेश्चंस करिए, मैंने आपको दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताया, आप उसको भी अपने क्वेश्चन अपने नोटबुक में आंसर लिखिए और मैं आपको आपके नेक्स्ट चैप्टर में मिलती हूँ। थैंक यू।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।